डीजे सुकेतु SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच।
आपको लगभग 20 साल होने वाले हैं डीजेइंग में।
हाँ जी।
और डीजेइंग इंडिया में।
राइट।
तो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स, यू डोंट लुक दैट ओल्ड।
थैंक यू।
सो अगर हम बात करें डीजेइंग की, डिस्क जॉकिंग जो है, तो ये कहाँ पर इंडिया में शुरू हुआ? क्या इसका शुरुआत 1990s में इंडी पॉप के साथ?
हाँ जी, 90s में हुआ कि इंडी पॉप बहुत बड़ा था तभी इंडिया में। जैसे कि अपने बाबा सैगल और अलीशा और श्वेता शेट्टी, ये सब लोग तो ऑलरेडी थे, लेकिन सबसे बड़ा हिट डीजेइंग का इंडिया में तभी हुआ जब बाली सगो ने 90s में एक एल्बम रिलीज किया था कॉल्ड बैक टू बॉलीवुड, और उसमें जो पहला रीमिक्स उन्होंने किया था वो है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और आई थिंक उस टाइम से ये रीमिक्सेस का कारवा शुरू हुआ इंडिया में, और लोग एक्चुअली रीमिक्सेस सुनने लगे कि अरे ये इतना पुराना गाना ये अपने प्रेजेंट टाइम के साउंड्स के साथ जो बनाया हुआ है, और वो अच्छा साउंड भी होता है और डांस करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है।
सुकेतु, आपके हिसाब से किन रीजन्स में इंडिया के डीजेइंग एज एन आर्ट पॉपुलर थी? मैं पंजाबी हूं तो मैं देखता था कि शादियों में ऑर्केस्ट्रा बजते थे, एंड सडनली दे वर रिप्लेस्ड बाय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बाय डीजेस।
आई थिंक सबको एक ये वो नोशन होता है ना कि मुझे अगर कोई गाना सुनना है तो मैं ओरिजिनल सिंगर की वॉइस में सुनूं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। मैं खुद भी गा सकता हूं और मैं अच्छा सिंगर हूं तो चलो ठीक है, एक बात है, लेकिन अगर मैं सोनू निगम के गाने सोनू निगम की वॉइस में सुनूं और अगर किसी ने उस पर अच्छे बीट्स डाल दिए और वो डांस सॉन्ग हो गया तो बात ही अलग है। प्लस आप पूरे एक ऑर्केस्ट्रा को हायर करोगे, फिर उनके सब उनका सेटअप, उनका माइकिंग, वो सब। डीजे ऐसा प्रोफेशन है कि इट्स अ वन मैन शो, एक आदमी आके हजारों लोगों को नचा सकता है, एंड इट्स जस्ट अ गुड थिंग।
आपने बात की ऑर्केस्ट्रा और डीजेइंग के डिफरेंस की, तो जैसा कि ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा लोग, ज्यादा मेहनत, तो कई लोग ये मानते हैं डीजेइंग में कोई मेहनत नहीं है, एक गाना उठाया, बीच में खिच-खिच किया और हो गया।
लेकिन कोई भी गाने को या कोई भी पार्टी को एक फ्लो में लेके जाना, आप राइट टाइम पे राइट गाना बजाए, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि यू नो कि हर कोई डीजे जैसे आके कोई भी म्यूजिक बजा ले और लोग नाचेंगे। आई थिंक दैट फ्लो मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और वैसे डीजेज है जिनको स्पेसिफिकली बुलाते हैं क्योंकि देयर फ्लो इज रियली गुड, कि आप कौन सा गाना पहला बजाएंगे और आप कौन सा गाना लास्ट बजाएंगे, कौन सा गाना कहाँ पे ड्रॉप करना है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इट्स अ स्किल ऑन इट्स ओन।
डीजेइंग एज एन आर्टिस्ट, डीजेइंग एज अ साइंस,
राइट,
ठीक है, तो कितना जरूरी है एज अ डीजे आपकी बैकग्राउंड में वो म्यूजिक की ट्रेनिंग का होना?
आई थिंक म्यूजिक ट्रेनिंग और एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज ऑफ म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद तबला सीखा है 4 साल, जब भी आई थिंक 12 साल की उम्र में, 12 से 16 साल की उम्र में, एंड मैं एक्चुअली डीजे बनना ही नहीं चाहता था। आई वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल तबला प्लेयर, और मैंने कॉन्सर्ट्स भी किया है पंडित जसराज के साथ, सोनू निगम जी के साथ, रूप कुमार राठौर जी के साथ। आई थिंक कि शायद मुझे लगता है कि मेरे रीमिक्सेस हिट इसीलिए हुए क्योंकि मेरे पास वो म्यूजिक बैकग्राउंड था, वो बीट्स का बैकग्राउंड था, इसलिए शायद मैं कुछ अच्छा कर पाया। सो आई थिंक म्यूजिक बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर नहीं भी है लेकिन आप म्यूजिकली इंक्लाइंड है तो वो बहुत हेल्प करता है।
ये तो बात हो गई टैलेंट की। अब एक और ग्रुप की बात करते हैं जिनको बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं समझा जाता है, वो है रैपर्स इंडिया के। यो हनी सिंह, बादशाह वगैरह,
right.
कहीं लोगों के एक मानसिक धारणा बन गई है कि ये कुछ भी बकवास गाने गा रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहा है पेपी म्यूजिक।
नहीं, और,
लेकिन ये हिट है।
हाँ, नहीं, मैं अग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि आपको अगर रैपर भी बनना है तो आपके लिरिक्स लिखने के लिए और वो एक उसको ट्यून देने के लिए भी टैलेंट की जरूरत है। इंडिया में लाखों रैपर्स हैं, लेकिन क्यों सिर्फ बादशाह और या हनी सिंह या ऐसे ही कोई रैपर्स आउटशाइन हुए? क्योंकि उनमें वो टैलेंट था और उन्होंने वो रैप बनाया और वैसे गाने बनाए कि लोगों को पसंद आए। सो आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि अगर आप यू नो रैपर है तो आप टैलेंटेड नहीं हो और आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट ट्रू।
आपको लगता है कि रैपर्स के आने से डीजेइंग की आर्ट को खतरा होगा या
नहीं?
दोनों
साथ नहीं।
में मिलके
काम करते हैं? आई थिंक दोनों साथ में मिलके इनफैक्ट ज्यादा अच्छा होगा। इनफैक्ट इवन आप अगर बादशाह के अभी गाने सुने जो बहुत सारे हिट हुए हैं, वो डीजे को मेंशन करते हैं हमेशा गाने में, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते हैं। प्लस अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी भी यू नो डीजे को समझा दो कि म्यूजिक बंद नहीं हो जाए। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन है कि हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते और डेफिनेटली वो हमारे बिना कुछ नहीं करेंगे।
तो आप ये कह रहे हैं कि एक टाइम पे जब 90s में डीजेज आए, उन्होंने ट्रिब्यूट दी आर डी बर्मन और बड़े ग्रेट सिंगर्स को अपना टैलेंट दिखा के, और आज रैपर्स अपना टैलेंट दिखा के डीजेस को दे रहे हैं।
कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ भी पॉपुलर करना है तो आई थिंक आई वुड से अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द डीजे, क्योंकि अगर हम आपके गाने पार्टीज में नहीं बजा जाएंगे तो लोग नाचेंगे नहीं और वो पसंद कैसे करेंगे. सो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक इन बोथ द थिंग्स. और अगर कोलैबोरेशन अच्छा है तो फिर ऑफ कोर्स एनी सॉन्ग कैन बिकम गुड एंड अ हिट.
आपने पार्टी की बात की तो याद आया कि कई बार पार्टी में ऐसा माहौल बन जाता है कि डीजेस के साथ कई ऐसी हरकतें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए. कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता है?
आई थिंक हमारे प्रोफेशन में क्योंकि पार्टीज रात को होती है, नाइट क्लब्स में होती है, जैसे आज रात को हम शो कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थोड़ी इधर उधर बातें हो जाती है, बट आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग बैड. और आई थिंक डीजे ज़्यादातर काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, तो अगर कोई ज़्यादा पी भी लिया तो हम उनको हैंडल करना जानते हैं, सो वी डोंट रियली गो इनटू दैट बिट.
चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की म्यूजिक इंडस्ट्री में, जहां पर ऑटो ट्यून और ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं.
right.
डीजेइंग में भी ऐसे कई सॉफ्टवेयर आएंगे जहां आपको सिंपल लूप्स उठा के डालना है.
Absolutely.
तो फ्यूचर ऑफ डीजेइंग एज एन आर्ट क्या है?
आई थिंक दैट अभी तो एटलीस्ट इंडिया में तो डीजेइंग इज अ वेरी नेसेंट स्टेट, अभी तो चालू हुआ है. आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और आई थिंक वो दिन दूर भी नहीं है कि टॉप 100 डीजेस ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन डीजेस भी आने लगेंगे एंड इट्स गोना बी दैट गुड. टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज अ हेल्प, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आपको मैं अगर 10 लूप्स दूँ और 2 डीजेस को साथ में बिठा दूँ, एक जिसको कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है या ज़रा भी टैलेंटेड नहीं है और एक जो जानता है, आप वो 10 लूप्स में से कौन सा एक लूप उठा के वहाँ पे डालेंगे और जो हिट होगा, आई थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. तो टेक्नोलॉजी इज देयर ऑफ कोर्स टू हेल्प यू, लेकिन अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, मैं आपको सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स दे दूँ, आप फिर भी अच्छा गाना नहीं बना पाओगे.
अच्छा सुकेतु, आप ऑस्ट्रेलिया आते रहते हैं, यहाँ पर क्लब सीन कैसा है, आपको कैसा रिसेप्शन मिलता है इंडियन ऑस्ट्रेलियन ऑडियंसेस से?
आई थिंक बहुत ही अच्छा है. मुझे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया आना ज़्यादा अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि उनको उतना चांस नहीं मिलता कि बॉलीवुड म्यूजिक पे वो लोग नाच सके और एंजॉय कर सके, क्योंकि वो थोड़ा यहाँ पे यू नो ज़्यादातर क्लब्स इतना ज़्यादा करते नहीं है. एक दो प्रमोटर्स है जैसे आशीष गोस्वामी ऊर्जा में, जो बॉलीवुड नाइट्स और पंजाबी नाइट्स प्रमोट करते हैं. तो आई थिंक जब भी वो लोग हमारे पार्टी में आते हैं, यहाँ का क्राउड हमारे शोज में आते हैं, दे एन्जॉय इवन मोर बिकॉज दे नो दैट इट्स समथिंग फ्रॉम इंडिया विच इज़ कम ओवर हेयर, और उनको ऐसा शायद सीन कभी यू नो बहुत टाइम तक सुनने को या देखने को नहीं मिलेगा.
तो अपने इंडियन ऑस्ट्रेलियन चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते?
मैं आपको बस उतना ही बोलूंगा कि आप बॉलीवुड म्यूजिक सुनते रहिए और आज रात को हमारे साथ पार्टी कीजिए, आपको अच्छी नाइट प्रॉमिस करते हैं और आपको याद रहेगी.
तो पार्टी अभी शुरू हुई है.
एब्सोल्युटली.